जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तुमार नाहीक दोष शास्त्रे कहे पंडित्याद्ये ईश्वर तत्व ज्ञान कभून हे तुमार नाहीक दोष शास्त्रे कहे पांडित्याद्ये ईश्वर तत्व ज्ञान कभुनये तुमार नाहीक दोष शास्त्रे कहे पांडित्याद्ये ईश्वर तत्व ज्ञान कभुनये शब्दार्थ तुम्हार आपका नहीं का नहीं है दोष दोष शास्त्रे शास्त्र यही यह कहे बताते हैं पांडित्याद्ये केवल पांडित्य से ईश्वर तत्व ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान कभू कभी नहे नहीं होता। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। दोहराइए, यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। तात्पर्य यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। बड़े बड़े पंडित तक कृष्ण को नहीं समझ सकते, फिर भी वे भगवत गीता पर टीका करने का दुस्साहस करते हैं। भगवत गीता पढ़ने का अर्थ है कृष्ण को समझना, फिर भी हम देखते हैं कि अनेक पंडित कृष्ण को समझने का प्रयास करने में भारी भूल करते हैं। वैदिक साहित्य में गोपीनाथ आचार्य की कथन की कोई ही जगह पुष्टि हुई है। कठोपनिषद के 1:2:23 में कहा गया है, नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्वैश आत्मा विवृणीत तनुष्याम। और उसी उपनिषद कठोपनिषद के 1:2:9 में भी ये कहा गया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यन्तुमाप सत्य धृतिर्वर्तासि स्वात्यं भूयान्न चिकेतः पृष्ठः। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा केवल व्याख्या तर्क तथा पांडित्य से प्राप्त नहीं किए जा सकते। कोई उन्हें केवल अपने मस्तिष्क के बल पर नहीं समझ सकता, यहाँ तक कि सारे वैदिक साहित्य के अध्ययन के द्वारा भी भगवान नहीं समझे जा सकते हैं। किंतु यदि भगवान प्रसन्न होकर रंच भर भी कृपा कर दें तो मनुष्य उन्हें समझ सकता है। किंतु उनकी कृपा के पात्र कौन है? केवल भक्तगण। केवल वे ही समझ सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है। जब भगवान निष्ठावान भक्त की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तब वे स्वयं उसके समक्ष प्रकट होते हैं। स्वयं एव स्फुरति अधः, न तो वेदों के कथन से भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए, न ही तर्क द्वारा इन कथनों की व्यर्थ में निंदा करनी चाहिए। तो इस श्लोक की पहले और भी दो है जिसके तात्पर्य नहीं है, उसमें पढ़ लेता हूं। यद्यपि जगत गुरु तुमी शास्त्र ज्ञानवान, पृथ्वी ते नहीं पंडित तुमार समान, ईश्वरेर कृपालेश नाही क तो माते, अतएव ईश्वर तत्व ना पार जानिते। तो गोपीनाथ आचार्य ने सर्वम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित है और अनेक शिष्यों के गुरु है, निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर अन्य कोई विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान के रंच मात्र कृपा से भी वंचित है, अतः आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। तुम्हार नहीं कह दोष शास्त्रे कहे, पांडित्याद्य ईश्वर तत्व ज्ञान कभू न है। यह आपका दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाई, केवल भक्ति र वश चैतन्य गोसाई। धन की बहुत मान, किसी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हो, करोड़पति पूरा कौन, ये दुनिया के सबसे बड़ा धनी कौन है? हैं? कौन कोई बोल रहे माता जी? बिल गेट्स भाई, कोई भी हमारे देश के सबसे बड़ा धनी कौन है? हैं? कोई धन, कोई टाटा कहेगा, कोई और जो भी है, सबसे जो धनी व्यक्ति है, धन जन, जन का अर्थात फलुआ, जिसके बहुत बड़े फॉलोइंग है, नहीं लाखों लोग जिसके पीछे चलते हैं, हमेशा जिसको फॉलो करते हैं, धन जन है पांडित्य, बहुत बड़ा स्कॉलर है, पूरा वर्ल्ड में उसके लिए एक नंबर के स्कॉलर है स्कॉलरशिप। इसलिए कहते कि धन जन पांडित्य चैतन्य नहीं पाए, ये भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से बहुत बड़े फॉलोअर्स, बहुत बड़े नेता बन जाने से या बहुत बड़े पंडित स्कॉलर बन जाने से भी दिग्विजयी पंडित तभी भी भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। कैसे प्राप्त हो सकते हैं? केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई, केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। हैं? उसी की बात यहां पर कौन बोल रहे हैं? गोपीनाथ आचार्य बोल रहे हैं, सर्वम भट्टाचार्य, ये दोनों कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सर्वम भट्टाचार्य स्वयं बृहस्पति के अवतार है, देवताओं के गुरु बृहस्पति के अवतार है सर्वम भट्टाचार्य। इसलिए बृहस्पति साधारण सभी सबसे बड़ा विद्वान माने जाते हैं। इसलिए ये कह रहे कि गोपीनाथ आचार्य, ये निश्चित सत्य है कि आपके समान पंडित या पृथ्वी में दूसरे कोई नहीं है, आप सर्वश्रेष्ठ पंडित हो, लेकिन फिर भी आपके प्रति भगवान की कोई भी कृपा नहीं है, इसलिए आप भगवान को पहचान नहीं पाते हो। आपके घर में ही गौरांग महाप्रभु है, भगवान स्वयं पधारे, लेकिन फिर भी आप इनको साधारण समझ रहे हो। क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य सोच रहा था कि सन्यासी तो बहुत शांत दांत धीर स्वभाव के हैं, सारे सद्गुण के अधिकारी है, लेकिन इतनी कम उम्र में 24 साल उम्र में सन्यासी है, 24 साल की उम्र में ये कैसे वैराग्य धर्म को पालन कर पाएगा? मैं इसको दिन रात बैठाकर वेदांत सुनाऊंगा और इसकी हृदय से ही वैराग्य को पैदा कर दूंगा, पूरा कठोर वैराग्य, तीव्र वैराग्य को, इसको जैसे हो जाएगा संसार के प्रति, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं इनको बैठा कर सामने डेली वेदांत सुनाऊंगा। तो ये बात को सुनकर दोनों व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, किनको? गोपीनाथ आचार्य उनकी बहनी और मुकुंद दत्त वहां पर थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा। ये दोनों जानते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है, राधा कृष्ण नहे अन्य, और गोपीनाथ आचार्य जिनको साधारण मनुष्य ने कौन, सर्वम भट्टाचार्य जिनको साधारण मनुष्य समझ रहा है, कोई साधारण सन्यासी से समझ रहा है, और सोच रहा था कि ये भारतीय संप्रदाय से सन्यास लिए हैं, कैसे भारतीय सन्यास लिए हैं, मायावादी संप्रदाय में से ये मध्यम स्तर के माने जाते हैं, कौन सा भारतीय संप्रदाय, ऐसे उच्च स्तर के जो सन्यासी मायावादी संप्रदाय में तीन क्लास के सन्यासी आते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास सन्यासी है उनके टाइटल होगा सरस्वती तीर्थ, उनके टाइटल सन्यासी का टाइटल रहता तीर्थ बा सरस्वती और ऐसे ही टाइटल, लेकिन इनके टाइटल है भारती। तो भारती कैटेगरी जो है केशव भारती, भारती थे उनके, केशव भारती उनके सन्यास गुरु थे। तो कहते कि ये ठीक नहीं, इनको मैंने और संस्कार करके उच्च टाइटल के ऊपर ले जाऊंगा, हाँ इनको सरस्वती बनाऊंगा, सरस्वती या उस उच्च श्रेणी के सन्यासी का संस्कार देकर, क्योंकि वो सारे सन्यासी की भी पढ़ाता था पहले, कौन सर्वम भट्टाचार्य जो मायावादियों की गुरु था, बड़े बड़े सन्यासी मायावादी सन्यासी भी आकर उसके पास से पढ़ते थे, मायावाद का शिक्षा ले रहे थे, सन्यासियों के भी गुरु था वो, कौन सर्वम भट्टाचार्य। सिर्फ सोचता था कि ऐसे यंग सन्यासी इसको बैठा कर वेदांत पढ़ाऊंगा और इसको उच्च संस्कार देकर ये मध्यम स्तर का सन्यासी इसको उच्च स्तर का सन्यासी बना दूंगा, तीर्थ व सरस्वती स्तर पर ले जाऊंगा। तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य जो कुदत्त को अच्छा नहीं लगा, जानिए स्वयं भगवान ही ये अज्ञान से क्या क्या बोल रहा है भगवान के बारे में, आप भगवान को नहीं पहचान पाते। तो इसलिए गोपीनाथ आचार्य कहते कि ऐसो को माध्यम से भगवान को पहचाना नहीं जाता, शास्त्र में कहते कि पंडिताद्य ईश्वर तत्व ज्ञान को भुना है, जो अत्यधिक पंडित व्यक्ति उसके मन में घमंड रहता है, कहते कि दिनेर अधिक कृपा करे भगवान कुलीन ब्राह्मण पंडितेर बड़ा अभिमान। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं अन्यत्र चैतन्य चिंतामृत में, जो कुलीन पंडित है, बड़े पंडित के घर में, बड़े ब्राह्मण घर में जन्म लिया है कुलीन, और पंडित जो शास्त्र भास्त्र सब जान के व्याकरण के पूरे ज्ञानता, ज्ञान के छह विभाग को जानता है, क्या ज्ञान के छह विभाग के जो पारंगम है, छह विभाग क्या ज्ञान के है, सांख्य न्याय योग और सांख्य न्याय योग कर्मकांड वैशेषिक ज्ञान वेदांत, जो ज्ञान के छह विभाग में पूरे पारंगम हो तो ज्ञान, ये भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। ये क्या कहना, ज्ञान जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं ये भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए माता कुंती ने भी कहे, क्या कहे, जन्म ऐश्वर्य सुत शिविर एदमान मदह पुमान, ये अहंकार को बढ़ाते हैं। बड़े घर माने अच्छे घर में जन्म लेने से, ब्राह्मण परिवार में पंडित, पंडित की पुत्र बनने से बाप बहुत संस्कार सोचते कि मैं बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया हूँ, जन्म ऐश्वर्य बहुत बड़े धन धन के मालिक हैं, पूरे विश्व के सम्राट के पुत्र होने से, जन्म सुत श्रीभीर बहुत सुंदर स्मरण शक्ति धी शक्ति बड़े विद्वान पंडित होने पर, और श्री सौंदर्य बहुत सुंदर, ये सब पूर्वजन्म की सुकृति से मिलता है। किसी बड़े घर में जन्म लेना, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करना, बहुत विद्वान बनना, पढ़ते ही सब स्मरण रह जाना, कुछ लोग होते हैं पढ़ते ही स्मरण रह जाते, ये सब पूर्वजन्म की सुकृति से प्राप्त होता है। लेकिन ये सब कुंती महारानी कहते कि ये केवल अहंकार को बढ़ाता है, उस व्यक्ति फिर जनरल पब्लिक को देखे कि ये सब निकृष्ट है, मैं सबसे क्या है हाई क्लास है, और दूसरे को फिर घृणा करेगा। ये सब अहंकार को बढ़ाते हैं, घमंड को बढ़ाते हैं, ये भगवान को प्राप्त करने में बाधा। भगवान किसको प्राप्त है, त्वं अकिंचन गोचर, जो संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में शरणागत नहीं हुआ, सर्वस्व भगवान के चरण में अर्पण नहीं किया, काय मनोवाक्य में से उनकी संपूर्ण शरणागत नहीं हो गया, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने कठोपनिषद से तात्पर्य के प्रारंभ से श्लोक कोट करते हैं, नायम आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन ಜಮೇ ವೈಷ ಬೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸೈಷ ಆತ್ಮ ಅಭಿವೃಣತೆ ತನುಷ್ಯ. ಕಹತೆ ಕಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕಿ ತರ ಪ್ರಾಪ್ತ ನೀ ಪಾತೆ ಕೋಯ್ ಭಗವಾನ್ ಸಮಜನಾ ಕೆ ಲೀ ಚಾಹತಾ ಹೈ ಬಡೆ ಬಡೆ ಪ್ರವಚನ ದೇನೆ ಸೇ ಲಾಖೋ ಲೋಕೋ ಏಕಾಠಿ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಭಾಗವತ್ ಕಥಾಕಾರ ಬನ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕಿ ಕಥಾ ಮೇ ಲಾಖೋ ಲೋಕ ಆತೆ ಹೈ ಹೈ ಲಾಖೋ ಲೋಕ ಭೀ ಆನೆ ಪರ್ ಭೀ ಉಸ್ಕಿ ಕಥಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಪ್ರವಚನ ಕರ್ತಾ ಬನ್ ಜಾನೆ ಪರ್ ಭೀ ಕೋಯ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಐಸೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಹೋತೆ ನಾಯಂಗ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯಾ ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಪಂಡಿತ್ ಮೇಧಾ ಶಕ್ತಿ ಧೀ ಶಕ್ತಿ ಉಸ್ಕಿ ಪಾಸ್ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಬಾ ಸರ್ವಂ ಭಟಾಚಾರ್ಯ ಕಿ ತರಫ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೋನೆ ಪರ್ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪಹಚಾನ್ ನಹೀ ಸಕ್ತಾ ಬಾ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಬಾ ಬಹುನಾ ಸುತೇನ ಬಹುತ್ ಕು ಸುಣ್ಣೆ ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಲಾಲಸ ಹೈ ಸುಣ್ಣೆ ಸಬ್ ಜಗ ಜಹಾ ಭೀ ಕಥಾ ಹೋತಾ ಸಬ್ ಜಗ ಜಾಕಿ ಬೈಠ ಕೆ ಸುನತಾ ಹೈ ಪೂರಾ ಉಸ್ಕೆ ರೂಟಿನ್ ಕುಚ್ ಕಾಮ ನಹೀ ಯಾರ ಪೈಸಾ ಬಹುತ್ ಘರ್ ಮೇ ಹೈ ತೋ ಪೈಸಾ ಪಾಪ ಲೇತಾ ಹೈ ಜಹಾ ಕಥಾ ಚಲತಾ ಹೈ ಕಹಾ ಆಜ ಇಧರ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಕಾ ಕಥಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಆಸಾಮ್ ಬಾಬು ಕೆ ಆಸಾರಾಮ್ ಕಾ ಚಲ ರಹಾ ಹೈ ಉಧರ ಕಿರೀಟ್ ಭಾಯಿ ಕಾ ಚಲ ರಹಾ ಇಧರ ಜಹಾ ಭೀ ಚಲತಾ ಕಥಾ ಹೋ ಸಬ್ ಜಗ ಹೈ ಘೂಮತಾ ರಹತಾ ಹರ್ ಕಥಾ ಸುನತಾ ರಹತಾ ಹರ್ ಜಗ ಕಥಾ ಮೇ ಬೈಠನೆ ಸೇ ಐಸಾ ಹೀ ಸಾಲ ಭರ್ ಕಥಾ ಸುನನೆ ಮೇ ಕೇವಲ ಜೀವನ ಬಿತಾನೆ ಪರ್ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ನಹೀ ಸಮಜ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಬಹು ನಾ ಸುತೇನ ಕೌನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಜಮೇ ವೈಶ ಬೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಜೋ ಮೇರಿ ಚರಣ ಶರಣಾಗತ ಹೈ ಜೋ ಮೇರಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವೈ ಕೇವಲ ಮುಜೆ ಸಮಜ್ ಪಾಯೇಗಾ ಭಗವಾನ್ ಕಹತೆ ಕೆ ಜಿಸ್ ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಮೇ ಕಾಯ ಮನೋ ವಾಕ್ಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಚರಣ ಮೇ ಶರಣಾಗತ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುಯಿ ಹೈ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ವೈ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬಾ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕೃಪಾ ಉನ್ಕಿ ಭಕ್ತೋ ಕಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಮೇ ಜಬ್ ಈ ಡಿವೈನ್ ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಜಾತೆ ಥೆ ವೋ ಕಹಾಂ ಸೇ ಖಡಾ ಹೋಕರ್ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಗರುಡ್ ಕೆ ಪಿಛೆ ಗರುಡ್ ಕೆ ಸೈಡ್ ಮೇ ಜಹಾಂ ಮಹಾಪ್ರಭು ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಥೆ ವಹೀ ಖಡಾ ಹೋಕರ್ ವಹೀ ಸೇ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಗಯೆ ಲಾಖೋ ಲೋಕ ಮನೆ ಹಜಾರ ಲೋಕೋನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಗಯೆ ಸಬ್ ಆಯೆ ಥೆ ದರ್ಶನ ಮೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಬ್ ಭಾಗೆ ಸೀದೆ ಕಹಾಂ ಅಲ್ಟರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಸಾಮನೆ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಸಬ್ ದರ್ಶನ ಕರಿ ವಾಪಸ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಿ ಭಕ್ತಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಠಾಕುರ್ ವಹೀ ಖಾಡೆ ಥೆ ಗರುಡ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ತೋನು ಪೂಛೆ ಭಾಯಿ ಆಪ್ ಸಬ್ ಭಗವಾನ್ ದರ್ಶನ ಕಿಯಾ ನಾ ಮಹಾರಾಜ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ದರ್ಶನ ಹುವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದರ್ಶನ ಕರ್ ಲಿಯೇ ಏಕ್ದಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದರ್ಶನ ಸಬ್ ಬಹುತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದರ್ಶನ ಸಬ್ ದರ್ಶನ ಹೋ ಗಯಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಅಚ್ಛಾ ದರ್ಶನ ಹೋ ಗಯಾ ಭಕ್ತಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಠಾಕುರ್ ಅನ್ಕೋ ಸಮಝಾ ಹೈ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಹಮ್ ದರ್ಶನ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಆಮ್ಕೋ ದರ್ಶನ ಆಮ್ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ಯದಿ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇ ಆಮ್ಕೋ ಹಮಾರ ಪ್ರತಿ ಉನ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ತಭಿ ಹಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೋತಾ ಹೈ ಹಮ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿನ್ಕೋ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೂ ನಾ ಕೃಷ್ಣಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬದ್ಧ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಪರ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಅಪನೆ ಭಕ್ತಕ್ಕೂ ದೇಖತೆ ಹೈ ಪೂರೆ ಪೂರೆ ಲಾಖೋ ಜನತಾ ಮೇ ಯದಿ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಕೋಯಿ ಭಕ್ತ ಹೈ ಭಗವಾನ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉಸಿ ಕಾಪರ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಕಾ ಕಿಯೇ ಗರುಡ್ ಜೀ ಬೈಠೆ ಗರುಡ್ ಜೀ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೈ ಇಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಬ್ ದರ್ಶನ ಖೋಲ್ತಾ ಆಪ್ ಸೋಚತೆ ಕಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಹಮ್ ಜಗನ್ನಾಥಕ್ಕೂ ದೇಖ ರೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಪ್ಕು ನೀ ದೇಖ ರೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಕಿಸ್ಕೋ ದೇಖ ರೇ ಗರುಡ್ ಜೀ ಕೋ ದೇಖ ರೇ ಹೈ ಮೇರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಬೈಠಾ ಹೈ ಗರುಡ್ ಜೀ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಜಬ್ ಹಮ್ ಗರುಡ್ ಕೆ ಪಿಛೆ ಖಾಡೇ ರಹತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಜೋ ಗರುಡ್ ಜೀ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ತೋ ಗರುಡ್ ಜೀ ಕೆ ಪಿಛೆ ಖಾಡೇ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆ ಉಪರ್ ಭೀ ಉನ್ಕೆ ಕರುಣಾ ಕಾ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ನಹೀ ದೇಖ ಸಕತೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಪಾ ಕರ್ಕೆ ಆಪ್ಕು ದೇಖೆಂಗೆ ಆಪ್ ಐಸಾ ಹೀ ಕಾರ್ಯ ಕರೋ ಐಸಾ ಹೀ ಭಕ್ತಿ ಕರೋ ಜೆಸೆ ಭಗವಾನ್ ಆಪ್ಕೋ ದೇಖನೆ ಆಯಂಗೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ನಹೀ ಜಾತೆ ಥೆ ವೋ ಆಪ್ನೆ ಬೈಠಕರ್ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಜೋ ಕರ್ತವ್ಯ ದಿಯಾ ಕಿ ಡೈಲಿ ಬೈಠಕರ್ ನಾಮ ಜಪ್ತೆ ಥೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅವ್ರ ಉನ್ಕು ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಕೌನ್ ಆತಾ ಥಾ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆತೆ ಥೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನ ಉನ್ಕಾ ರೂಟೀನ್ ಹರ್ ದಿನ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯಂಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜಾಯೆ ತೋ ಹರಿದಾಸ್ ಕೋ ಅವಶ್ಯ ಮಿಲೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ಕಹಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಕಿ ಐಸೆ ಕುಚ್ ಸೇವಾ ಕರೋ ಕಾರ್ಯ ಕರೋ ಭಕ್ತಿ ಕರೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಆಪ್ಕೋ ದೇಖನೆ ಆಯಂಗೆ ಆಪ್ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ದೇಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಜ್ಯಾದಾ ಪ್ರಯಾಸ ಮತ್ ಕರೋ ಆಪ್ ದೇಖ ನೀ ಪಾವೋಗೆ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ದೇಖೋಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಆಪ್ಕೋ ನಹೀ ದೇಖತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಆಪ್ನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೈ ಹೈ ತೋ ಇಸಿಲಿಯೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಕಭಿ ಭೀ ಜಾತೆ ಥೆ ಮಂದಿರ ಮೇ ಗೌರಾಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಮಾರ್ಗಾನುಸರಣ ಕರ್ತೆ ವೈ ಗರುಡ್ ಕೆ ಪಿಛೆ ಸೈಡ್ ಮೇ ಖಡಾ ಹೋಕರ್ ಭಕ್ತಿ ಹಾಂ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕುರ್ ವಹೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೋ ದರ್ಶನ ಕರ್ತೆ ಕಹತೆ ಹಾಂ ಬದ್ಧ ಜೀವಿ ಹಾಂ ಕಹಾ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೋ ದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಯೋಗ್ಯತಾ ಹೈ हम यहीं खड़ा होंगे, यदि गरुड़ जी को देखेंगे, गरुड़ जी को भी प्रार्थना करते हैं हम, गरुड़ जी की कृपा होगा तो भगवान गरुड़ को देखते हुए कभी कभी हमारे ऊपर भी नजर आ जाएगा। तो इसलिए भक्ति के ये गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य कौन है, वो तो सरम भट्टाचार्य जो बृहस्पति है, और गोपीनाथ आचार्य कौन, कौन गोपीनाथ आचार्य, ये गोपीनाथ भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये गोपीनाथ आचार्य नहीं, बाद में किस रूप में आए थे, बलदेव विद्याभूषण के रूप में है। गोपीनाथ आचार्य जिन्होंने सारे वेदांत का चर्चा जो होता था, चैत्र आगे बताएंगे, महाप्रभु ने बैठक अपने सर्वम भट्टाचार्य भाग सुनाएंगे वेदांत सात दिन तक, लेकिन महाप्रभु ने इसको उनकी युक्ति को सारा टालते रहेंगे। अंत में जो दोनों के बीच में बातचीत हुआ था, सर्वम भट्टाचार्य और गौरांग महाप्रभु के बीच में सारे बातचीत को ये सुने थे, कौन, गोपीनाथ आचार्य। इसीलिए इन्होंने ही बात में बलदेव विद्याभूषण के रूप में आए और एक गौड़ीय संप्रदाय को एक प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में बनाने के लिए गोविंद भाष्य के वही जो भाष्य उन्होंने जो आलोचना सुना था, महाप्रभु की व्याख्या को सुना था, वेदांत की व्याख्या महाप्रभु ने करके सुनाया था सर्वभौमों को, उसी व्याख्या को आधार करके ही वही गोपीनाथ आचार्य बाद में बलदेव विद्याभूषण के रूप में आकर गोविंद भाष्य लिखे। इसको भक्ति विनोद ठाकुर अपने मतामत देते हैं। इसलिए वही गोपीनाथ आचार्य ही बलभद्र भट्टाचार्य के रूप में नहीं, सॉरी बलभद्र विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण के रूप में बाद में आए, लेकिन ये प्रकृत में ब्रह्मा जी के ही अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार, ऐसे ब्रह्म हरिदास नामाचार्य हैं, लेकिन ये भी ब्रह्मा जी का ही उन्हीं की एक्सपांशन माने जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये ब्रह्मा के अवतार हैं, कौन, इसलिए ये दोनों बातचीत चल रहा है, ब्रह्मा जी और कौन, बृहस्पति, बृहस्पति ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी सब महान भक्त है, तो इसलिए इनके ये बृहस्पति पंडित है, तो इनको कहते पांडित्य के माध्यम से कहाँ भगवान को समझ लोगे, जब तक तो कहीं शुद्ध भक्ति नहीं किया भगवान को नहीं समझ पाएगा है? एक व्यक्ति था जगन्नाथ जी के, मैंने वो रहता था मिथिला नगरी में, मिथिला नगरी कहाँ, जनकपुरी है, मिथिला नगर सीता जी के जन्मस्थान, जनक महाराजर्षि जनक की राजधानी में वहाँ रहता था एक व्यक्ति, उसके नाम था उदयन मिश्र, क्या था, बहुत बड़ा पंडित था, दिग्विजय पंडित रूप में पूरा भारत में सर्वत्र उसकी ख्याति था, बहुत शास्त्र डिटेल जानता था, वेद चारों वेद पुराण उपनिषद सब कुछ कंठस्थ था। तो पढ़ते पढ़ते एक जगह देखा कि ये लिखा गया है, जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात मुक्ति स ददाति कृपामय, जगन्नाथ जी इतनी कृपाणु है कि कोई जंतु बधजीव जाकर यदि किसी ना किसी उपाय से उनके दर्शन कर लेता मंदिर में व उनकी कृपा पात्र बने, उनकी कृपा दृष्टि की कृपा दृष्टि उसके ऊपर डाल जाता है, भगवान के दर्शन कर लेता है, तो ये जन्म मुक्त संसार से मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जिस मुक्ति को हजार हजार करोड़ों साल तक तपस्या करने पर भी बड़े बड़े विद्वान हैं प्राप्त नहीं कर पाते, केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करने जहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी जगन्नाथ विराजमान होते हैं, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जाकर जगन्नाथ जी को दर्शन कर लेने से वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इसको डाउट हो गया, पंडित है बोले कैसे होता है, खाली जगह गया कुछ नहीं किया जिंदगी को, अभी ऐसे ही घूमते घूमते पहुंच गया पुरी में और जगन्नाथ जी को दर्शन कर लिया तो बस हो गया भगवत धाम चला जाएगा, ये कैसा होता है, इसको प्रैक्टिकल परीक्षा करना चाहता हूँ, बोला देखता हूँ मैं जाके जगन्नाथ जी को दर्शन करता हूँ कैसे भगवत धाम चले जाता हूँ। तो इसलिए वो ये भावना लेकर आया जगन्नाथ जी को परीक्षा करने के लिए, जगन्नाथ जी को दर्शन करके कैसे मुक्ति प्राप्त होता है। जत्र सने जत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात मुक्ति सददाति कृपामय कृपानिधि, जगन्नाथ इसको मुक्ति दे देते हैं। तो ना आया पंडित ऐसे विचार करके आकर जगन्नाथपुरी में क्या किया आपने, कोई अच्छा रूम मैंने पैसा वाला था तो कहीं पर अच्छा कमरा लेकर है रेंट ले अपना रहा, बस आराम से रहकर रात्रि बिताया और दूसरे दिन सुबह दर्शन करने आएगा, सुबह सुबह बैठकर सालग्राम पूजन करते रहा, पंडित है तो सालग्राम पूजा करता था और लेकिन उस दिन सुबह जगन्नाथ जी के दर्शन खोलने के लिए कितनी भी प्रयास किया गया मंदिर का दर्शन नहीं खुला, पहले गए पहला दर्जा तो खुल दिया एक, लेकिन अंतिम में जो दर्जा अल्टर का सामने तो उसको खोलने के लिए कितना भी प्रयास किए हर दिन खुल जाता था। आज पुजारी लोग धक्का लगाते लगाते ऐसे सब कुछ खोल दिया, कहंडा कुंडा सब निकाल दिया, लेकिन कितनी भी धक्का लगाने से दर्जा खुलता नहीं आज है। तो राजा को भी बुलाया, राजा भी आया, सब लोग प्रयास किया, बहुत प्रयास करने, मल्ल से बुलाए जो सब तगड़े लोग, तो वो आकर कितनी भी प्रयास करने भी तो इसको हिला भी नहीं सके, दर्जा खुलता ही नहीं। क्या हो गया, दिन भर पड़ा रहा है, यानी क्या होगा, भगवान की भोग भी नहीं रहा, कोई सेवा भी नहीं हो पा रहा अंदर से, जो कुछ वो लोग पुजारी बढ़ा मुश्किल हो गया। तो राजा भी आ गए, सब लोग बड़ा चिंतित हो, कैसे होगा। तो जगन्नाथ जी ने कहे, देखो इसमें एक नास्तिक व्यक्ति पधारा है पुरी में, इसको पहले पुरी से जब तक निकालोगे नहीं बाहर, तो मेरा दर्शन नहीं मिलेगा है। एक मिथिला नगरी से आया एक व्यक्ति, क्या नाम उसका, उदयन मिश्रा। अब जाओ उसको जगन्नाथ कहिए इसी धर्मशाला में इतने नंबर कमरे में वहां रुका हुआ है, उसको पहले यहां से निकालो, पूरी से बाहर कर निकाल दो है, ये नास्तिक व्यक्ति है, इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, है? इसको जब तक पूरी से नहीं निकालोगे मैं दर्शन नहीं दूंगा, इसको निकालो बाहर, क्योंकि परीक्षा करने आया मुझे है, इसको विश्वास नहीं है। विश्वास ए पाई वे कृष्ण तर्क बहु दूर, तर्क करने से, युक्ति तर्क करने वाला जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, पंडित की पांडित्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे में सब राजा सब ढूंढकी पहुंच गए, सब पुजारी लोग, सारे पुजारी ग्रुप, बड़े ग्रुप गया, क्योंकि दिन भर दर्शन बंद हो रहा, बंद पड़ा, ऐसे कौन सा नास्तिक आ गया इसको, तो इसके कारण भगवान के दर्शन, लाखों लोग परेशान हो रहे, किसी का दर्शन नहीं, किसी का दर्शन नहीं मिल रहा। सब पहुंचे उसको, देखे उठो दर्शक, तुम लोग, तुम्हारा नाम उदयन मिश्र है। बोला हाँ हाँ, क्या हुआ है, मैंने दिग्विजय पंडित हूं, उदयन मिश्र मिथिला नगरी से पधारा हूं। राजा कहे, तुम कोई भी हो, आप अपने वो चौकीदार तो इसको पकड़ के खिचकी बाहर निकाल दो, पूरी से गेट आउट करे इसको जल्दी। वो तुम्हारे क्या हुआ, और राजा से वो तो बड़ा सोचता कि मैं पंडित हूँ, घमंड था, लेकिन राजा कहे कि इसको कैसे भी पकड़ के इसको बाहर करो, कहां से, पूरी से सीधा उठाई फेंक दो इसको, लाखों लोग परेशान हो रहे इसके लिए, भगवान दर्शन नहीं खुल रहे हैं। बोला क्या कारण, क्या महाराज, तो कारण तो बता दीजिए, क्या क्या कारण हुआ मेरा, मजु क्यों गेट आउट कर रहे, पूरी से क्या हुआ। नहीं, तुम नास्तिक हो जगन्नाथ जी कहेंगे, तुमको जगन्नाथ जी के ऊपर विश्वास नहीं है, हैं? और विश्वास जो ऐसे नास्तिक व्यक्ति को जगन्नाथ दर्शन नहीं जाना देना चाहते, इसलिए उनके दर्शन बंद है, खुलता नहीं है पहाड़, और तुम्हारे लिए लाखों लोग परेशान है, सारे लोग घूम रहे, किसी को दर्शन जगन्नाथ जी का नहीं हो पा रहा, जब जगन्नाथ जी कहेंगे तो चूंकि बाहर से पहले निकाल देने से पूरी बात में उनके दर्शन खुलेगा। तो बोला समझा, हाँ हाँ, मैं तो ऐसे डाउट रखा था मन में, जगन्नाथ जी की परीक्षा करूंगा, इनके दर्शन करने से ही मुक्ति कैसे मिल जाता है। बोला ठीक है राजा महाराज, जाने के पहले तो मैं खाली प्रणाम तो करके जाता हूँ। तो आया पंडित, आकर फिर जगन्नाथ जी सामने, वहाँ मंदिर के सामने प्रणाम किया, लेकिन अभी बहुत रोने लगा, रो रहा था कि जगन्नाथ मैं अपराधी हूँ, मैं आपको भी परीक्षा, मेरे पांडित्य के कारण मेरे घमंड बहुत एकदम टॉप मोस्ट स्तर पर आ गया है, और मैंने आपको तो आपकी बारे में, आपकी महिमा के बारे में ऐसा ही शास्त्र के वचन को भी डाउट किया, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मेरे लिए लाखों लोग परेशान हो रहे, मैं जा रहा हूँ, पूरी से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन जाने के पहले मैं आपको क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे अपराध के लिए क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर रो रहा कि जब उठ रहा था तुरंत ही पहाड़ खुल गया है, उसके मन में विश्वास आ गया जगन्नाथ जी की महिमा में, तभी फिर उसको दर्शन मिला। तो इस प्रकार जब तक हमें भगवान की महिमा में पूर्ण विश्वास नहीं है, तो भगवान को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहते कि विश्वास ही पाई वे कृष्णा तर्क बहु दूर। तर्क कौन करता है, पंडित होते हैं, ज्ञान के घमंडता उनके पास में है, इसलिए तर्क वितर्क में दिन बिताते रहते हैं है? और इसीलिए गोपीनाथ आचार्य कह रहे कि सर्वम भट्टाचार्य जी को कि ये इसमें कोई दोष नहीं है, निश्चित रूप में आप समग्र विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित हो, क्योंकि बृहस्पति के अवतार है, लेकिन फिर भी आपके प्रति भगवान का ही कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं होने के कारण आप भगवान को नहीं समझ पा रहे हो, आपके साथ में ही गौरांग महाप्रभु आपके घर में होने पर भी आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, तो साक्षात भगवान है और आपके प्रति उनकी कृपा नहीं होने के कारण आप नहीं समझ पा रहे। जिसको भगवान की कृपा नहीं होता है भगवान को नहीं समझ सकता है, भगवान को दर्शन नहीं कर सकता है। यदि भी भगवान के साथ में रहते थे, द्वापर में सो कितने लोग भगवान के साथ में रहते थे, सभी भगवान को पहचानते थे कृष्ण, शिशुपाल दंत वक्र है, काशीराज जरासंध, कितने बड़े बड़े सब दंत वक्र, कितने लोग सब पौंडरक सब रहते थे राजा सब महाराज, कृष्ण रहते थे कृष्ण को पहचानते नहीं थे भगवान, हैं भगवान में द्वेष करते थे। तो इसलिए जिसके प्रति कृपा नहीं होता भगवान को, वो भगवान को नहीं पहचान सकता है, क्योंकि भगवान के कहते कि पांडित्यादि ईश्वर तत्व कभू है, इसका पहले कहते कृपा जिसको नहीं होता तो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, पांडित्य के माध्यम से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही हम सूर्य के दर्शन केवल सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही कर सकते हैं, अन्य किसी आलोक के माध्यम से नहीं कर सकते, अन्य कोई किसी प्रकार की रोशनी से, रात्रि के 12 बजे आप सोचो कि मैं सूर्य को दर्शन करूंगा, कितने हजारों हैलोजन लगा लेने पर भी सूर्य दर्शन नहीं हो पाएंगे, हैं जब भी ब्रह्म मुहूर्त आएगा वो सूर्य के प्रकाश ही फैलेगा, उसी सूर्य प्रकाश के माध्यम से आप किसको देख सकोगे, हैं सूर्य को दर्शन कर सकोगे। इस प्रकार आचार्य लोग ने उदाहरण देते, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि भगवान की साक्षात्कार तभी होता जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा नहीं होगा भगवान को दर्शन नहीं कर पाओगे, पहले वो कृपा दृष्टि आपके ऊपर डालेंगे, हैं इसलिए भक्तिवान सोच ठाकुर कहते थे कि मैं गरुड़ के पीछे खड़ा हूँ तो मेरे उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगा, गरुड़ के हमेशा गरुड़ के ऊपर देखते हो, उनके शुद्ध भक्त है, अगर उस बाजू में खड़ा रहूंगा तो गरुड़ के पास में कभी ना कभी उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगा, हैं तभी फिर मैं योग्य बनूंगा फिर उनको देखने जगन्नाथ जी। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकता, भगवान की कृपा, वो भगवान किसको कृपा करते हैं ना, जो उनकी अनन्य भक्ति करता है। भक्ति किसको कहते हैं, प्रेममयी सेवा कहते, भगवान की प्रेममयी सेवा, सेवा की भावना को अपनाने से, क्योंकि हमारे अंतकरण में क्या भावना है क्या सोचते हैं प्रत्येक क्षण में भगवान को सब कुछ पता रहता है, भगवान को हम चीटिंग नहीं कर सकते। हमारे अंतकरण में जब सच्चा प्रेम उमड़ता है भगवान को भक्ति करने के लिए तभी भगवान फिर कृपा करते हैं, उनको दर्शन कैसे हम कर पाएंगे, हमारे पास में क्या क्या कमियां है जिस कारण से हम भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, उनके कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं, उन कमियां को दूर करने के लिए भगवान ने फिर कुछ उपाय कर देते हैं। ये बद्ध जीव के प्रति भगवान के सबसे बड़ा कृपा यही है कि उस बद्ध जीव को लेकर किसी शुद्ध भक्त के चरण में डालना, अर्थात सदगुरु को चरण में लेकर उनको डालना, उनको सदगुरु प्रदान करना भगवान की सबसे बड़ा कृपा है बद्ध जीव के प्रति। कृष्ण कृपाते कौन मिलता है, गुरु मिलते, कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवानी, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए अपने। यदि भगवान किसी बद्ध जीव के प्रति कृपा करते हैं इसका क्या पहचान है, नहीं वो अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए, अंदर में तो वही गुरु रूप में चैत्य गुरु रूप में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्हें आपके अंतकरण शुद्ध होने जा रहा है, आप उनके सच्चे प्रतिनिधि के अन्वेषण में हैं जो आपको कृष्ण तक ले जाएगा, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय में तीव्र इच्छा प्रकट हो रही है। तो भगवान ने फिर आपको उनके बाह्य प्रतिनिधि कौन, गुरु की चरण में लेकर सदगुरु की चरण में डालते हैं, क्योंकि यदि आपके मन में इच्छा प्रकट हो रही है भगवान को दर्शन करने के लिए लेकिन अभी आपके पास में योग्यता में कुछ कमियां है, बद्ध जीव के प्रति भगवान विश्वास नहीं कर सकते, ये आज कुछ बोल रहा है काल फिर अपने बात बदल देगा, है भगवान को केवल अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर विश्वास रहता है जो संपूर्ण शरणागत है। अब बद्ध जीव तो आज कुछ विपद में आ गया, जाकर मंदिर में रोना शुरू कर दिया, भगवान मैं शरण में आया हूँ, मेरे कोई नहीं है, सारा आप ही सब कुछ है, और थोड़ा धन हाथ में आ जाएगा तो फिर गया मंदिर में फिर 2 महीना नहीं आएगा, हैं तो भगवान ऐसे विश्वास नहीं करते लोगों को, बद्ध जीव को, लेकिन उनके शुद्ध प्रतिनिधि के प्रति विश्वास है रहता है। फिर भी भगवान देखते कि इस व्यक्ति रो रहा है, वह मेरे पास आना चाहता है, तो उनके प्रतिनिधि के चरण में लेकर डालते हैं सदगुरु के चरण में, और सदगुरु फिर हमको सुधारता है, सदगुरु देखते कि हमारे पास में क्या कमी है, आचार्य मांग बिजानियत, वही आचार्य उनकी ही बाह्य रूप है, वही कृष्ण ही बाह्य रूप से किस रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, गुरु के रूप में, है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा भाव्यते व सद्भी, साक्षात हरि के समान को सम्मान करना चाहिए क्योंकि हरि की प्रतिनिधि है, भगवान ने ही हमको उनके ही प्रतिनिधि पास में डाल दिए, और उन्होंने आगे देखते कि हमारे पास में क्या कमियां है और हमको सुधारते हैं, सुधार का फिर योग्य बनाते हैं, जैसे हम कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार कृष्ण कृपाते गुरु मिले और गुरु कृपाते कृष्ण मिले, ये दोनों अल्टरनेटिव हैं। आप एक की भक्ति करोगे, कृष्ण की भक्ति करोगे, आपको गुरु चरण में डालेंगे, गुरु फिर आपको योग्य आपको टर्नअप करके फिर योग्यता देकर फिर भगवान को दर्शन करने के लिए अधिकारी बना देता है। आज सर्व भट्टाचार्य जो पंडित है वो तो सबके गुरु है, उसका गुरु कोई है नहीं, किसका है? तो वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? इसलिए जो घमंड है उसके ज्ञान के घमंड, स्वयं भगवान को ही उनकी गुरु बनकर बृहस्पति है, तो इसलिए भगवान स्वयं फिर उसकी घमंड को नष्ट करेंगे। आगे आप पढ़ोगे जैसे वेदांत की चर्चा होगा, वो तो बड़ा वेदांतिस्ट था, 7 दिन तक महाप्रभु सुनेंगे, चुपचाप सुनते रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं बाद में, फिर जब महाप्रभु व्याख्या करके उसको समझाएंगे वेदांत, तो उसके सारे अज्ञानता दूर होते जाएगा। फिर महाप्रभु ने कृपा करके उसको किस रूप में दर्शन देंगे? सर्वम भट्टाचार्य प्रति इसलिए महाप्रभु कृपा किए क्योंकि ये दोनों भक्त चाहते थे कि सर्वम भट्टाचार्य भक्त बन जाए। कौन चाहता था? गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त, ये दोनों महाप्रभु प्रार्थना करते थे ये मूर्ख को उद्धार कीजिए, क्योंकि ये दोनों शुद्ध भक्त की इच्छा था कि सर्व भट्टाचार्य की उद्धार हो जाए, इसलिए महाप्रभु उसको उद्धार किए। इसलिए हम जैसे बद्धजीव है, हमारे लगे हमारे के लिए यदि कोई शुद्ध भक्त प्रार्थना करेगा तभी हमारा उद्धार होने वाला है, ऐसे हमारा प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं, लेकिन कोई शुद्ध भक्त हमारे के लिए यदि प्रार्थना करेगा, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार सकति याचे आमित कांगा कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, ऐसे दैन्यता से भावना को अपनाते हुए जो हम उनके शुद्ध भक्तों के आश्रय में आते हैं और शुद्ध भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो अभी कृष्ण हमको उद्धार करते हैं, हमारे प्रार्थना नहीं सुनने वाले हैं, वो जानते हैं बद्ध जी ये हमेशा अपने बात बदलते रहेगा। अभी मेरे मंदिर में आ रहा है और दूसरा दिन फिर कहीं जा जाएगा, धन के लोभ को ही दिखाएगा तो फिर दूसरे कहीं चले जाएगा। तो इसलिए हमें भक्ति प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में आकर, भगवान के जो शुद्ध भक्त उनके शरण में आकर उनके मार्गदर्शन में जब आगे बढ़ेंगे वही हमें फिर क्वालिफाइड बनाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि, यही प्रकृति में भक्ति के रहस्य है, कैसे भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं और कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। समय कोई प्रश्न है? थोड़ा तो 2 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न? हाँ हम नहीं कहे तो भक्ति से भक्ति सरस्वती ठाकुर ने जो आदर्श अपने जीवन में निभा रहे थे उसको आप बताए। तो आप अंबरीश महाराज नहीं हो, अभी सीखो, ट्रेनिंग लो, ये वो परफेक्ट है, सिद्ध है, आप अभी साधक हो, तो आप ऐसे पूरा लगाना पड़ेगा जाके दर्शन करो भगवान को, ठीक है, लेकिन आपको अपना अंबरीश महाराज माने रातारात नहीं बन सकते हो, ठीक, प्रयास करो, इनको अनुसरण करो, मंदिर सफाई करना है करना। अभी आप यहाँ से भक्त बोल रहे हो, अंबरीश महाराज सोच रहे, फिर सोच रहे कि MBA का डिग्री कैसे मिलेगा, है ना, है कि नहीं? अभी इंजीनियरिंग क्या है, इसके बाद साधारण सब MBA करते हैं, अभी झाड़ू लगा रहे हैं आज कल जाके फिर क्या माता जी पिताजी सोचते होंगे कि बेटा हमारा IAS ऑफिसर बनेगा, और आप सोचते कि नहीं कि IAS बड़ा बड़ा MBA बन जाते हैं, MBA कर लेते हैं, और यहाँ ऐसे झाड़ू लगाने से भगवान के दर्शन करने से थोड़ी होता, तो आप ऐसे अंबरीश महाराज की तरफ सारा जिंदगी डेडिकेट नहीं कर सकते। अंबरीश महाराज ये नहीं कि आज भगवान को देख रहे काल जाएंगे और कहीं कोई ड्रामा देखने जाएंगे, तो इसलिए हमें भगवान दर्शन करते हैं, ठीक है, अच्छा है, जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हम जानना चाहिए हमारा स्तर कहाँ पर है और हमें उनको आदर्श रख सकते हैं अंबरीश महाराज को, और उसको अनुसरण करना ठीक है, अच्छा है, आप यदि अनुसरण कर पाओगे पूरा जिंदगी यही बिताओगे राधिका रमण के चरण में, और कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊं, राधिका रमण चरण छोड़ी कहीं नहीं जाऊं, ऐसा प्रतिज्ञा ले लोगे तो अच्छा है, ठीक है। तो रोते रहोगे तो आंख से अश्रु आएगा, तो फिर भगवान को छुपाए करेंगे, ठीक है। और कोई प्रश्न है? ಆವಾಗ ನೀರ
हरे कृष्णा थैंक यू महाराज फॉर वंडरफुल लेक्चर. एक डाउट था महाराज, जैसे कभी सटल लेवल पर कोई मिस्टेक्स हम कर जाते हैं, जैसे उन्होंने किया था कि भगवान को पहचानने में गलती कर दी, उनका पता चल गया, उनको रियलाइज करवा दिया गया संभव, बट कभी कभी ऐसा होता है हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, बट अंदर अंदर खुद को पता होता है किसी में भी, कभी भगवान के लिए कभी डिवोटीज के लिए. तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए एक एक पर्सन को?
मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया क्या बोल रहे. उदय ने उसे जैसा सुधार दिया गया उसका गलती, हाँ सुधार दिया. हाँ हमारे मन के इसीलिए तो गुरु का जरूरत है, गुरु और किस लिए जरूरत है, गुरु किस लिए जरूरत है, गुरु यही हमको सुधारने के लिए, इसीलिए भक्तों की संग है, इसीलिए भक्तों की संग है, सदगुरु इसीलिए चुनते हैं. गुरु शब्द का अर्थ क्या है, भी है शिष्य का अर्थ जो शासन में रहता है, किसके शासन में रहता है, गुरु के शासन में. हमारे पास में जो कमियां हैं इसको सुधारना गुरु का काम है, आपका चपलसी करना गुरु का काम नहीं. गुरु आगे कहेगा तो आप बच्चे बहुत आपका मतलब बहुत प्रशंसा करना, ऐसा नहीं, आपके पास में क्या कमियां हैं उसे देखना सुधारना, ये गुरु का काम है. और सर यदि इनकी बहन ही थे कौन, गोपीनाथ भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, फिर भी उन्होंने देखे कि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति इनके मन में ऐसे भाव, तो वो तुरंत कहे डांटे इसको, तुम कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता भगवान को, है पंडित है, पंडित कभी नहीं समझ सकते, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये शास्त्र कहता है. बड़े बड़े पंडित कभी भगवान को नहीं समझते, घमंड के कारण हमेशा वो भगवान को भी साधारण समझते हैं. अभजानंती मांग मुढ़ा मानसिंह तनुमाश्रितम, तो इसलिए गुरु हमेशा शिष्य को डांटता है और उसकी कमियां को सुधारता है, इसलिए गुरु स्वीकार किया जाता है. आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहले गुरु पादाश्रय, आदौ गुरु पादाश्रय, ठीक है, गुरु के बिना भक्ति नहीं. हाँ
हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया. और मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने बताया जो बहुत सुनने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता कोई, तो हम भी तो सुनते हैं, यहाँ पे सुनते हैं या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या कोई भक्ति शास्त्री कोर्स में,
तो ये सारे श्रवण करने के लिए क्या क्यों कहा जाता है, आपके मन में सुप्त भक्ति को जागृत कराने के लिए. सुनना ही केवल मैंने ये गोल नहीं है, ये एक मीन्स है तो गोल को अटेंड करने के लिए. गोल क्या है,
प्राप्त करना
है, स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधेशु एतैर एव किंकर, सारे विधि निषेध हम इतने कड़क से पालन करते हैं हमेशा कृष्ण को मन में धारण करने के लिए, हमेशा स्मरण करने के लिए है. ये सारे इसलिए कहा किया जाता है कि आप हमेशा जैसे कृष्ण को चिंतन कर पाओगे, हमेशा कृष्ण आपके स्मरण में रहेंगे, हैं ठीक है. लेकिन फिर भी उसके मन में इच्छा हो रही कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, तभी इसके इसलिए भगवान इसको लेकर गुरु के चरण में उनके प्रतिनिधि चरण में डालते हैं, जो इनको फिर सुधारता है. अकाम सर्व काम मुख्य काम उदारधि तीव्रण भक्ति जोगे न जजता पुरुष परामे, यानी कि पूरा निष्काम हो जाओगे भगवान शरण में आओगे. हैं शरण तो तभी होगा जब तो पूर्ण शरणागत हो जाओगे, जो निष्काम तभी निष्काम हो जाओगे, लेकिन प्रारंभ से आप भौतिक इच्छा के साथ भी शरण में आ सकते हो, ध्रुव की तरफ है, ध्रुव महाराज की तरफ है किसी भक्ति. इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहे कि अकाम सर्व काम मुख्य काम, कुछ भी हो आपके मन में दूसरे के पास में मत जाओ, कृष्ण के पास में आओ. हैं तो कृष्ण आपके उपाय करेंगे इसको सुधारेंगे, से चाहे अर्थार्थी होकर ध्रुव महाराज आए, लेकिन भगवान ने उपाय कर दिए, ध्रुव जैसे मिलेंगे किनको, हैं नारद जी को. प्रभुपद में तात्पर्य लिखते हैं भगवान ने भेजे ध्रुव ने किसको, नारद को ध्रुव के पास. ध्रुव के मन में जो उत्कंठा हुआ, प्रबल उत्कंठा भगवान के पास में, चाहे उसके अर्थार्थी है, दुखी होकर क्षत्रिय बालक गया भगवान के शरण में, तो भगवान इसी नारद जी को भेज दिए, जाओ उसको मदद करो. हैं रसिकानंद रोने लगे उड़ीसा में, तो भगवान ने किसको भेज दिया? श्यामानंद को भेज दिया, उनके पास जाओ इसको। इसलिए आप जो सच्चे रहोगे, सच्चे दिल में, चाहे आपके मन में भौतिक इच्छाएं है, लेकिन फिर भी भगवान सहायता करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, आप यदि एक कदम आगे बढ़ाओगे तो 10 कदम आ जाते हैं आपके तरफ। है ठीक है, हाँ। लास्ट क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एग्जांपल लिया दंत वक्र का, शिशुपाल का, कि वो भगवान को नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भी नहीं पहचान पाए थे, तो भगवान को पहचानना इतना मुश्किल उनके लिए भी क्यों है, जो कि कहा जाता है ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं हर वक्त, फिर भी उनको इतनी मुश्किल पड़ गई पहचानने में? हम जैसे जीव तो खैर पहचान पता नहीं पाएंगे कि नहीं,
इसलिए कोई अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहा गया कि सारे भगवान जिसको चाहेंगे उसको तो वो प्राप्त कर सकता है। जमे वैसे गुणते तेना लभ्य, जिसको जो भगवान चाहेंगे वही उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान जिसको चाहते हैं वही उनको प्राप्त कर सकता है, भगवान नहीं चाहते तो प्राप्त नहीं कर सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्य जोगमाया समाप्त, भगवान आप जोगमाया शक्ति के आवरण से छुप जाते, बस उनको कोई नहीं पहुंचा सकता, ब्रह्मा भी नहीं पहुंचा सके, क्या है छोटा बड़ा है। वही प्रार्थना किए थे इनको अवतीर्ण होने के लिए, तो वो फिर वो खुद ही पहुंचा नहीं पा रहे। सभी को मोहित भगवान की जो माया, किसी को भी मोहित कर सकता है। भगवान चाहेंगे एक व्यक्ति मेरी पहचान फिर पहचान लेगा, इसीलिए कहा गया उन्हीं की कृपा से ही उनको प्राप्त किया जाता है। उसी प्रभुपाद जी ने कहते तात्पर्य में भी, भगवान की कृपा नहीं होने से भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन बद्ध जीव के प्रति भगवान की सबसे बड़ा कृपा है कि उसको लेकर उनके प्रतिनिधि के चरण में डालो, फिर प्रतिनिधि उनको योग्य बनाता है। तो उनके क्वालिफिकेशन कैसे वो क्वालिफाइड होगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, ऐसे क्वालिफिकेशन को स्टेप बाय स्टेप सिखाता है भक्ति योग में। इसलिए भगवान कहे कि लक्ष्य क्या है, मय मनाधस्व मई बुद्धि निवेशी शशि मय वो तो उद्धन निशंस है, समय मेरे चरण में मति को लगा के रखो, मन बुद्धि सब कुछ समर्पित करके मेरी चरण में मति को लगा। ये नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा मन हमेशा मेरे चरण में नहीं लग पा रहा है, तभी क्या करना, अभ्यास है, तभी अभ्यास करना है। मय मनाधस्व मई बुद्धि निवेश है निवेशी शशि मय वो तो उद्धन निशंस है, अथ चित्तं समाधातुं न सुखमसी मई स्थिरम अभ्यास जुगे न तो मामी चाप्तुं धनंजय। ये नहीं कर पा रहे हो, हमेशा 24 आवर्स मेरे चिंतन द्वारा नहीं हो रहा है, मेरे चरण में मन निवेश नहीं हो रहा है, तो फिर गुरु स्वीकार करो, विधि भक्ति की अभ्यास करो। इसलिए आचार्य आते हैं आकर आपको सदगुरु विधि दिया है कैसे मन को भगवान के चरण में लगाओगे, ये विधि दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, मंगलार्थ में आओ, माला जप करो, नित्य भागवत श्रवण करो, ग्रंथ भागवत के श्रवण करो, व्यक्ति भागवत की सेवा करो, ये सब कहा गया नित्यम भागवत सेवाया। ये सब करोगे आस्ते 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 फिर भगवान चरण में मन लगेगा, अभ्यास करना। इसलिए अभ्यास सिखा गया, बच्चे छोटा बच्चा थोड़ी चलना सीखा, लेकिन इसको आस्ते आस्ते सिखाया सीखता है। तो इस प्रकार सदगुरु आपको गाइड करते हैं कैसे आपकी अनर्थ नष्ट होगा और विधि देते हैं। तो इसको अभ्यास करते करते फिर हम भगवान को हमेशा स्मृत धारण करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं की कृपा से। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृतम की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधिका रमण भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, मिताय गुरु प्रेमानंदी।